ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप द्वितीय अध्याय श्लोक 33। अथ चेत्वं इमं धर्मं अथो चित्यमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि। संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। हित्वा पापं अवाप्स्यसि। अथो चित्वं इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। तो ये श्लोक का अर्थ का हर शब्द का अर्थ हम विचार करेंगे आप। अतः अथ अथ का मतलब क्या है? अथ का मतलब है अतः। अतः चेत शब्द का अर्थ है यदि। त्वम का मतलब है तुम। चेत त्वम संधि होकर क्या हो गए? चेत त्वम। और इमाम का मतलब है इस। तो चेतम इमाम है ना, तीन शब्द संधि के बाद क्या हो गए? चेत त्वम इमाम, ये तीन शब्द एक हो गए हैं। और वो शब्द क्या है? चेत्वम इमाम। अथ चेत्वम इमाम धर्मं। धर्मं का मतलब क्या है? अतएव धर्मं का मतलब है धर्म। अतएव यदि तुम इस धर्म को, कौन से धर्म को? संग्रामं। संग्राम, संग्राम का मतलब है युद्ध, युद्ध को संग्रामं न करिष्यसि। न करो, बहुत अच्छा। अगर तुम यदि तुम्हारे ये जो धर्म है, क्या धर्म था अर्जुन का? अर्जुन कौन वर्ण का था? क्षत्रिय था। क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम ये धर्म, तुम्हारा ये धर्म ना पालन करोगे तो क्या होगा? ततः स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा। तुम्हारा अपना धर्म, हित्वा का मतलब क्या है? ये शब्द तो आप सबको मालूम है। अतः ततः का मतलब तब, अतः का मतलब था क्या? अतः। और ततः का मतलब क्या है? तब। तो संग्राम, तुम्हारा ये स्वधर्म जो है, अपना धर्म जो है, इसको अगर तुम हित्वा परित्यक्त कर दोगे, हित्वा का मतलब क्या है? त्याग देना। हित्वा मतलब खोकर, यहाँ इसका हिंदी प्रतिशब्द दिया गया है, हित्वा का है खोकर। खोकर का मतलब भी ये भी होता है कि त्याग कर, अपना धर्म को अगर तुम खो बैठे हो, ऐसे अपना धर्म जो है, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के धर्म है संग्राम करना, युद्ध करना, अगर वो धर्म अगर तुम पालन नहीं करोगे तब क्या होगा? पापम अवाप्स्यसि। पापम का मतलब तो आप जानते हैं, पापम पाप पूर्ण फल को, अवाप्स्यसि का मतलब क्या है? प्राप्त होगा, तुम प्राप्त करोगे। अर्थात अगर कोई अपना स्वधर्म को पालन नहीं करता है तो उसको क्या होता है? उसके फल स्वरूप पाप होता है। तो क्या करना चाहिए हर व्यक्ति को? अपना धर्म जो है उसको पालन करते हुए भगवान को सेवा करना, ये पहली, तो पहला कर्तव्य क्या है? स्वधर्म को पालन करना। स्वधर्म का मतलब क्या है? वर्णाश्रम धर्म। मैं पहले बताया था, और वर्णाश्रम कैसे होता है, किस विचार से वर्णाश्रम होता है? चार वर्ण है, चार वर्ण है, और चार वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये चार वर्ण कैसे इसको निर्माण हुआ है? चार वर्ण का गुण और कर्म के अनुसार। कौन बनाया? भगवान स्वयं बनाया। भगवान खुद बोल रहे हैं भगवद गीता में, चातुर्वर्णं माया शिष्ट गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के विभाग के अनुसार मैं चार वर्ण का सृष्टि किया। वो चार वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और गुण की विचार कैसे हुआ है? सत्वगुण के द्वारा जो व्यक्ति प्रभावित होता है वो है ब्राह्मण, जो रजोगुण के द्वारा प्रभावित होता है वो है क्षत्रिय, जो रजो और तमो ये दो गुण का मिश्रण के द्वारा प्रभावित होते हैं वो है वैश्य, और जो तमोगुण के द्वारा प्रभावित होता है वो है शूद्र। तो ये चार वर्ण है, चार वर्ण है गुण के अनुसार और कर्म के अनुसार। ये गुण की द्वागुण, ये तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित होने से आदमी विशेष विशेष गुण मतलब कार्य करने का प्रवृत्ति प्राप्त होती है। जैसे ब्राह्मण का कार्य क्या है? आध्यात्मिक चिंतन करना और आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का कोशिश करना। क्षत्रिय का कर्म क्या होता है? स्वाभाविक रूप से रक्षा करना। ऐसे क्षत्रिय रजोगुण के प्रभाव से क्या होता है? भोग करने की इच्छा होता है। सत्वगुण के प्रभाव से त्याग का मनोभाव उत्पन्न होता है। जो सात्विक है वो भौतिक जगत के बारे में ज्यादा लिपट नहीं, भौतिक जगत में ज्यादा लिपटना नहीं चाहते हैं, परंतु जो क्षत्रिय है वो चाहता है भौतिक जगत को भोग करने का। तो उसका प्रवृत्ति होता है भोग करने का, परंतु धर्म के विचार से बोला गया है कि अगर तुम भोग करना चाहते हो तो उसको रक्षा भी करना पड़ेगा। अगर हम कुछ भोग करना चाहते हैं तो उसको प्राप्त करने का क्षमता चाहिए और उसको रक्षा करने का भी क्षमता चाहिए, नहीं तो दूसरे आकर जो हमसे अधिक बलवान है वो आकर हमसे ले लेंगे उसको, है ना। जो ये क्षत्रिय का ये है, क्षत्रिय का जो जो गुण के विचार से ये उसको स्वीकृत स्वीकार किया गया है कि क्षत्रिय जो चाहता है वो प्राप्त कर सकता है, उसका अगर बल हो तो वो उसको प्राप्त कर सकता है, ये सुजोग दिया गया है। जैसे आप जानते हैं ये एक संस्कृत कहावत है कि वीरभद्रा वसुंधरा, ये वसुंधरा किसके भोग के लिए है, वीरों के लिए, भोग के लिए। जो वीर है वो भोग करेगा, जो कमजोर है उसके भोग के लिए नहीं। उसको वो अगर भोग करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको मांग के भोग करना पड़ेगा, मांग के उसको प्राप्त होना होगा। परंतु क्षत्रिय का विचार कैसा है, अगर क्षत्रिय को चाहता है तो बाजार से पैसा देकर खरीदा नहीं खरीदेंगे। क्षत्रिय जो है, असल क्षत्रिय जो था, देखिए पहली बात यह है कि आजकल के जमाने में क्षत्रिय नहीं है। कले अशुद्धा शूद्र कल्पा ही ब्राह्मणा कलि संभव, ये कलियुग में सब शूद्र बन गए हैं। इस कलियुग में सही ब्राह्मण नहीं है, सही क्षत्रिय नहीं है, दो चार वैश्य मिलता है परंतु बाकी सब शूद्र है, शूद्र है। ये कलियुग का स्वाभाविक स्थिति है, सब शूद्र बन जाता है। आप देखते हैं ये ब्राह्मण जो ये क्षत्रिय जो होता था वो राजा क्या करता, राजा अगर कोई दूसरा राज्य को कब्जा करना चाहता था वो क्या बोलता, उसको खबर भेजता था, नहीं तो अपना घोड़ा भेज देता था अश्वमेध यज्ञ के लिए, या तो उसको बोलता था, संवाद भेजता था, मैं आपका राज्य अपना वश में लाना चाहता हूं, तो आप अगर चाहते हैं तो मेरा वश में आ जाइए, नहीं तो आइए मेरा साथ लड़ाई कीजिए, और उस लड़ाई में जिसका जय होगा वो उस राज्य को प्राप्त होगा, है ना। ये विचार तो सही विचार था उस समय का, परंतु आजकल का जमाना बदल गया है, कलियुग के प्रभाव से जमाना बिल्कुल बदल गया है। आजकल क्या होता है, राजा का या नेता का विचार कैसे होता है, नेता का चुनावती कैसे होता है, वोट के द्वारा, और वोट कौन देता है, जो आदमी आम जनता जिसके कुछ पता नहीं है कौन जो नेता बनना है, जो नेता बनेगा उसका क्या गुण होना चाहिए, उसको कोई विचार नहीं है, कोई भी उसका ज्ञान नहीं है, कोई जानता नहीं है नेता कौन बनना हो, किसको बनना चाहिए। जो आके बोलता है तुम्हारा लड़के के में लिए मैं नौकरी दे दूंगा, तुम्हारा लड़के का शादी करवा दूंगा, तो आपको वोट दो, वो जाकर वोट देता है, और वोट मिलने के बाद न तो उसका लड़का का शादी, लड़की का शादी और लड़का का नौकरी, उसको बस आके पूछता भी नहीं है कि आप कैसे हो, है ना। ये है आजकल का, ये कलियुग का परिस्थिति, इसके बारे में बताया गया है। कलियुग का परिस्थिति जो है ये प्रतारक और प्रताड़ित का युग है, जो प्रताड़ना करने में बहुत कायम है वो नेता बनता है, और नेता बनकर वो क्या करता है, आम जनता को क्या भला करता है, नहीं, आम जनता का शोषण करता है। परंतु जो वैदिक जो समाज था उसका परिस्थिति, उसका हाल ऐसा नहीं था। वैदिक समाज का हाल कैसा था, राजा क्षत्रिय राजा बनता था जिसके पास बहुत शक्ति है, और वो मरने में डरता नहीं है, नहीं था वो लड़ने में नहीं डरता था, मरने में डरता था, नहीं, ना तो मरने में ना तो लड़ने में उसको डरता, उसको डर वो वीर होता था। और उसका और एक गुण होता था, उदार होता था, अपना प्रजा को अपना जो शासन में जो व्यक्ति आता था उसको अपना पुत्र के रूप में पालन करता था। ये जो प्रजा जो शब्द है, ये प्रजा शब्द का अर्थ क्या है? ये तो संस्कृत शब्द है, हिंदी में तो प्रजा का शब्द तो प्रयोग होता है नहीं, प्रजा राजा का प्रजा होता है, उसको क्या बोलता है हिंदी में? हाँ, जनता तो सभी है नहीं, प्रजा ठीक है जो राजा का राज्य में जो आदमी रहता है उसको संस्कृत में प्रजा कहा जाता है, हिंदी में भी प्रजा ही होता है। तो ये प्रजा जो है, प्रजा शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकृष्ट रूपे न जायते, विशेष रूप में जिसका जन्म हुआ है वो है प्रजा। मतलब राजा का पत्नी का गर्भ से उसका उत्पन्न जन्म नहीं हुआ, परंतु वो भी राजा का संतान है, उसके कारण वो है प्रजा। और उस प्रजा को अपना पुत्र की तरह राजा पालन पोषण करता है। और राजा होते हुए भी, सारा राज्य का अधिपति होते हुए भी वो ब्राह्मण के सामने ऐसे उनके शिष्य के रूप में आप उनका पैर के पास बैठते थे, बैठकर उनका निर्देश ग्रहण करते थे और उनके निर्देश के अनुसार राज्य शासन करते थे। तो वैसे समाज देखिए क्या स्वाभाविक रूप में कैसा होगा, जो राजा वो राजा होते हुए भी अपना राज्य पर उसका आसक्ति नहीं था और वो कभी उस राज्य को अपना अधिकार का वस्तु नहीं समझते थे। वो सोचते थे कि राजा का मनोभाव कैसा होता था, मेरा ये राज्य जो है ये भगवान का है, मेरा नहीं, मैं भगवान का प्रतिनिधि के रूप में इस राज्य को शासन कर रहा हूं, परिचालना कर रहा हूं, मैं परिचालक हूं, मैं मालिक नहीं हूं। और भगवान का प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने ब्राह्मणों को देखते थे, सद ब्राह्मण जिनके निर्देश के अनुसार राजगुरु या राजमंत्री, मंत्री जो होते थे सब ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय मंत्री नहीं बनता, क्षत्रिय सेनापति बनता, बल्कि मंत्री जो होता था सब ब्राह्मण होता था। और राजा का गुरु भी रहते थे और गुरु जी ने परंतु जो राज ब्राह्मण जो होता था वो कोई 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 संपदा पूर्ण जीवन नहीं चाहते थे, संपदा नहीं चाहते थे, वो केवल चाहते थे कि भगवान के सेवा कैसे करेंगे और भगवान के विषय का जो ज्ञान है वो आम आदमी को कैसे प्रदान करेंगे, ये था ब्राह्मण का विचार। वैसे ब्राह्मणों ने शहर में भी नहीं रहते थे, उन्होंने कहाँ रहते थे? उपवन में रहते थे। उपवन का मतलब वन के अंदर कोई नदी के किनारे एक बहुत सुंदर स्थान बगीचा बनाकर और वहां अपना कुटिया बनाकर उन्होंने रहते थे, क्योंकि ये भौतिक जगत का कुछ वस्तु प्राप्ति के लिए उनका कोई लालच नहीं रहता था। तो ये ऐसे जो ब्राह्मणों ने राजाओं को परिचालना करते थे। तो अब देखिए ऐसे ब्राह्मणों ने जब राजा का परिचालना करेगा जिसका खुद कुछ प्राप्ति के लिए कुछ लालच नहीं रहता था तो उनका मनोभाव और उनका चरित्र कैसा होता था? बहुत सरल और सीधा होता था, वो कपट नहीं होते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी दूसरे को नुकसान करने का कोई चिंतन नहीं करते थे। ऐसे इस जमाना में दो एक ब्राह्मण जो मिला है कुछ पहले जमाने में, इस जमाने में तो मैं बोला ब्राह्मण नहीं है, उसीलिए हमारे गुरु जी गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी ने उन्होंने बोलते थे कि मैं सारा दुनिया में ब्राह्मण बना रहा हूं। अमेरिका में जाकर प्रभुपाद ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण का जन्म के अनुसार होता है या गुण के अनुसार होता है? जो ब्राह्मण का गुण प्राप्त हो गया है वो क्या ब्राह्मण है या नहीं? और जिसका ब्राह्मण में ब्राह्मण का परिवार में जन्म होते हुए भी वो जिसके ब्राह्मण का गुण नहीं है वो क्या ब्राह्मण है? नहीं। तो ब्राह्मण कैसे हम बन सकते हैं? जन्म के अनुसार नहीं, गुण के अनुसार। और कैसे ब्राह्मण का गुण क्या है? ब्राह्मण का पहला गुण है भगवत चिंतन, भगवान के बारे में चिंतन। समो दमो तपो शौचम शांति आर्जवम अर्जवम एवच ज्ञान विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव। यह है ब्राह्मण का गुण। सम दम इंद्रिया का संयम करना, मन को प्रसन्नता प्राप्त होना, और जो असत प्रवृत्ति जो है उसको दमन करना, तपस्या सुचिता, दूसरे के प्रति खमा क्षमा की मनोभाव, वेद पाठ के प्रति आसक्ति और भौतिक जगत के प्रति विरक्ति। तो आप देखिए, अगर अमेरिका में या अफ्रीका में या रशिया में अगर कोई व्यक्ति इस गुणों को प्राप्त हो गया तो क्या ब्राह्मण है या नहीं? हाँ? अगर ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म नहीं हुआ फिर भी वो ब्राह्मण है। अगर अमेरिका में जन्म होते हुए भी कोई अगर भौतिक उसका जो कुछ भौतिक ये था प्राप्ति था, भौतिक विलास का सुख का जो संपदा का प्राप्ति जो हुआ था उसको अगर वो त्याग कर भगवान को सेवा में लग गया और भगवान के सेवा के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया, वो ब्राह्मण है या नहीं?
है।
तो प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं सारा दुनिया भर ब्राह्मण बना रहा हूं। आजकल के जमाने में ऐसे तो सब शूद्र बन गए हैं, तो हम ब्राह्मण बना, क्योंकि अगर ब्राह्मण नहीं रहेगा समाज को परिचालन कौन करेंगे? समाज का परिचालन तो शूद्र नहीं कर सकते। समाज के परिचालन के लिए ब्राह्मण का जरूरत है, क्षत्रिय का जरूरत है, परंतु क्षत्रिय बनाना बहुत मुश्किल है और शायद भगवान की कृपा से कभी ना कभी ये होगा, क्योंकि आजकल का जो परिस्थिति है इस परिस्थिति में क्षत्रिय बनना बहुत मुश्किल है। जैसा कि जो क्षत्रिय है वो तो केवल लड़ाई नहीं करता है, वो अपना राज्य अधिकार कर लेता है, परंतु आजकल का डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का परिस्थिति ऐसा हो गया है, प्रजातंत्र के जो परिस्थिति जो है वोट के द्वारा नेता निर्वाचन, इस परिस्थिति में जो क्षत्रिय जो है उस गुण के द्वारा वो देखिए, क्षत्रिय तो दूसरे के पास जाकर नहीं बोलेंगे हमको वोट दीजिए। आप सोचिए राणा प्रताप क्या दूसरे अपना आदमी के पास जाकर बोलेंगे कि हमको वोट देकर आपका राजा बनाएंगे? नहीं, हम जय श्री श्री राधा मोहन की, राणा प्रताप, शिवाजी, ये सब क्षत्रिय थे और वो किसी के पास कुछ भीख नहीं मांगने को गया, वो अपना बल से अधिकार कर लिया। उन्होंने सोचा कि धर्म का रक्षा करना चाहिए। कल जो मैं बोल रहा था गुरु गोविंद सिंह के बारे में, धर्म को रक्षा करना चाहिए, तो उन्होंने उसके कारण एक खालसा एक संगठन बनाया था, शैनों को कोई संगठन जो जिसका कार्य था का ये धर्म को रक्षा करना, ऐसे हाँ जब मैं जो बोल रहा था कि इस जमाने में कोई दो चार ब्राह्मण जो हम देखे हैं पिछले जन्म में, उनमें से एक है चाणक्य। देखिए चाणक्य सही ब्राह्मण था, कैसे वो चंद्रगुप्त को राजा बनाया, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया, परंतु वो चंद्रगुप्त के प्रासाद में नहीं रहता था, वो अपना कुटिया में रहते थे, राजा से पैसा भी नहीं लेते थे, खाना भी खाने के लिए भी कुछ नहीं लेते थे, वो उच्च वृत्ति करके खाते थे। मतलब उच्च वृत्ति का मतलब है जो जो उसको क्या कहता है ग्रेन्स, जो अनाज को खेत से काटने के बाद जो अनाज खेत में पड़ा रहता था उसको लेकर वो अपना वो खाते थे। देखिए वो राजा बनाया चंद्रगुप्त को, फिर भी राजा से कुछ भी नहीं देते थे। और जब चंद्रगुप्त ने जब उनका पता चला कि चंद्रगुप्त उसका उनका निर्देश नहीं मान रहा है, थोड़ा कुछ घमंड हो गया है उनमें और चाणक्य को नहीं मान रहा है, तो चाणक्य चंद्रगुप्त को छोड़कर चले गए, उसको कोई परवाह नहीं था। ठीक है, तुमको मैं राजा बनाया और राजा बने हो, अगर आप तुम हम मेरा निर्देश मेरा शासन नहीं ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारा साथ मेरा कोई लेन देन नहीं है। निकल गए थे। और चाणक्य चले जाने के बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त सत्यानाश हो गए थे। तो ऐसी है ब्राह्मण, असल ब्राह्मण का मनोभाव और कार्यकलाप। तो ये गुण के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होता है। तो क्षत्रिय का रजोगुण के द्वारा प्रभावित होने के कारण उनको भौतिक जगत का भोग करने का इच्छा रहता है, केवल इच्छा ही नहीं बहुत बहुत बलवान इच्छा रहता है। और वो इच्छा पालन करने के लिए वो क्या करता है, जो कुछ वो चाहता है वो बल के द्वारा उसको ग्रहण करता है। और ग्रहण करते समय अगर लड़ाई हुआ, लड़ाई में उसका प्राण भी कभी त्याग देना पड़ता था, बल्कि उनसे कोई उनका डर नहीं था, ना तो कोई अफसोस था। तो उसके कारण भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अथ चेतम इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। तुम अपना स्वधर्म को परित्याग करने के कारण तुमको पाप मिलेगा, पाप होगा। और तुम अगर तुम्हारा जो कार्य है जो संग्राम करना क्षत्रिय का जो धर्म है वो अगर तुम मेरे लिए करोगे तो क्या होगा, सारे पापों से तुम्हारा छुटकारा नहीं आएगा। तो ये है अपना धर्म करने ना करने का फल और अपना धर्म करने का फल और अपना धर्म भगवान के लिए करने का फल, ये तीन विचार है। अगर हम अस्वधर्म अपना धर्म जो है वो अगर नहीं पालन करते हैं तो पाप होता है, जब हम अपना धर्म पालन करते हैं तब क्या होता है, तो पुण्य होता है। और जब हम अपना धर्म भगवान के लिए करते हैं तब क्या होता है, पाप या पुण्य दोनों से ही छुटकारा मिल जाता है। तो अब क्या करना चाहिए, आप बताइए क्या करना चाहिए, भगवान के लिए सब कुछ करना चाहिए, भगवान के लिए ही सब कुछ करना चाहिए। उसके फल क्या होता है, उसका फल इस भौतिक जगत के छोड़ने का जब समय आता है, मतलब मृत्यु का समय, तब हम भगवान का कृपा प्राप्त होते हैं। और उस कृपा प्राप्त होकर हम इस भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान के पास वापस चले जा सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई प्रश्न है किसी को? हाँ जी बताइए। गिव इन माइक। हाँ बताइए।
शरीर का आपने बताया है, तो शरीर के पिता तो कहता है कि शरीर मेरे दिल से हुआ, माता कहती है कि ये मेरे गर्भ से हुआ, पत्नी कहती है कि इससे मेरा विवाह हुआ, मैं तो इससे भोग कराने को किसका शरीर है?
आप बताइए।
पिता कहता है
नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ये आप प्रश्न किया है तो आप ही बताइए कौन ये शरीर किसका है। नहीं, ये तो प्रश्न जो मैं किया हो तो बहुत सरल, आप तो जानते हैं शरीर किसका है। ये असल में ये शरीर आपका है ना, माता का गर्भ से मिला है, परंतु ये शरीर तो आपका है ना। जैसे सोचिए एक गाड़ी कोई कंपनी कोई फैक्ट्री से तैयार हुआ है, जैसे सोचिए मारुति कार कौन बनाया है? फैक्ट्री में तैयार हुआ है, परंतु वो जब आप खरीद लिया है तो किसका गाड़ी है? फैक्ट्री का है या आपका है? आप ही कहें ना। वैसे ये शरीर माता के गर्भ से आया है, परंतु ये शरीर आपका है, परंतु आप ये शरीर नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ये शरीर आपका है परंतु आप ये शरीर नहीं है, ये है समझने का बात। ये शरीर आपका है, जैसे ये कपड़ा पहने हुए है, ये किसका कपड़ा है बताइए? बाजार से तो लाए हैं, परंतु आप किसका कपड़ा है? आप क्या बोलते हैं, बाजार का कपड़ा है ना? क्या कहते हैं कि मेरा कपड़ा है? बाजार से आप खरीदे हैं, परंतु ये कपड़ा आपका है, परंतु आप तो ये बल्कि आप तो ये कपड़ा नहीं है, है ना? ये आपका कपड़ा है परंतु आप ये कपड़ा नहीं है। वैसे ये शरीर आपका है, आप शरीर नहीं है। आप कौन है? आप शरीर हैं। बहुत धन्यवाद। ठीक है, सोच के कल बताना हमको और थोड़ा सो। हाँ तो आप तो समझ गए हैं, मैं उनको समझने के लिए आवेदन पेश कर रहा हूँ। अच्छा, और कोई प्रश्न है? बताओ। शायद तुम रात को नहीं सोया था। तो ठीक है, तो ऐसे उठकर बैठ के करने से नींद आता है, तो वैसे चलते हुए जपते रहो, तब नींद नहीं आएगा। ओके। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी को? हरे, अच्छा आप बताइए प्रश्न है। इसीलिए आप शाम को भगवत गीता का जो पाठ हो रहा है इसमें आ रहे हैं, है ना? कुछ जानकारी हो रहा है क्या? ओके। ये जो पाठ हो रहा है, ये जो चर्चा हो रहा है, इसका उद्देश्य है ताकि सबको जानकारी हो। देखिए मेरा भी तो कुछ जानकारी, ये मैं तो भी कुछ नहीं जानता था पहले, मुझे भी कुछ ये नहीं था, ज्ञान नहीं था, परंतु मेरे सौभाग्य के कारण गुरुजी के कृपा और सहारा मिला है, उनसे शिक्षा मिला है, और उसके कारण कुछ थोड़ा बहुत कुछ जानकारी हुआ है। तो जो मैं समझा तो वो आप सबको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना? और जब ये कोशिश जब मैं कर रहा हूँ तब ज्ञान भी हो रहा है, और भी ज्ञान हो रहा है, जानकारी हो रहा है।
हरे
कृष्ण, बहुत धन्यवाद। ये आज बहुत आनंद की बात है कि आप आपका मस्तक मुंडन कर रहे बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ऐसे जो आप लोग जो हमारा ये जो आवेदन इसका ये ग्रहण कर रहे हैं, ये देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि यहाँ आना, मेरा उज्जैन में आना सार्थक। ये याद रखना पड़ेगा कि ये राम जो है वो कृष्ण ही है। मतलब ये राम शब्द का अर्थ है रमते इति राम, रमन राधा। ये जो राम जो है ये है राधा रमन। राधा रमन कौन है? कृष्ण है, है ना? समझे? ये ऐसा आप ये भी सोच सकते हैं कि राम ये कृष्ण, हरे कृष्ण और हरे राम जो है ये राम श्री रामचंद्र है, ये भी आप सोच सकते हैं। या तो आप अगर केवल कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि दिल में एक इमेज आया है जिसको आप जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो वो इमेज में अगर आपका मन, हरे कृष्ण जय श्री राधा माधव, उस पर ही अपना चिंतन आरोप करना चाहते हैं, अर्पण करना चाहते हैं, तो ये सोचना कि ये राम जो है ये श्री कृष्ण ही है। ये राम का मतलब है राधा रमन कृष्ण, रमते इति राम। राधा रमन कौन है? राधा को रमन करने वाला कौन है? राधा रानी को भोग करने वाला कौन है? कृष्ण है। तो ये राम भी कृष्ण ही है। अच्छा, और एक बात ये भी हम कहना चाहता था। देखिए, जब हरे कृष्ण महामंत्र आप जप रहे हैं, जपते हैं, तब कोई इमेज का चिंतन का जरूरत नहीं है। तब केवल वो ये नाम जो है, ये शब्द जो है, इस शब्द पर ही ध्यान रखना चाहिए, ये शब्द का ही श्रवण करना चाहिए, चिंतन नहीं। क्योंकि अगर चिंतन करेंगे ना कुछ रूप का, तो आप कृष्ण के बारे में सोचेंगे, उसके बाद वृंदावन के बारे में सोचेंगे, उसके बाद अमिताभ बच्चन के बारे में सोचेंगे। मन का धारा ऐसा ही होता है, वो एक से दूसरा जगह चला जाता है। परंतु करना ये चाहिए कि केवल ये श्रवण ही करना चाहिए। चिंतन अगर है, मन का जो चिंतन है वो केवल श्रवण ही करते रहेंगे, सुनते ही रहेंगे, और कुछ नहीं। मन कहाँ रहेगा? वो नाम पर ही रहेगा। क्योंकि ये जो है हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये शब्द ब्रह्म है, कृष्ण स्वयं है। ये शब्द जो है स्वयं भगवान ही है, ये हरे कृष्ण महामंत्र। और ये नाम से ही, ये शब्द से ही भगवान का प्रकाश हो, भगवान का रूप का प्रकाश हो। ऐसा नहीं हम नाम कर ये मंत्र जपते हैं और मन में कुछ चिंतन भी करना पड़ेगा भगवान के रूप का। नहीं, रूप का मन, देखिए ये मन जो है, मन क्या है? मन भी एक भौतिक वस्तु है। मन है एक इंद्रिया, एक इंद्रिया है मन। पांच है बाहर का इंद्रिया, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। ये पांच है बाहर का इंद्रिया, और मन है अंदर का इंद्रिया। मन भी एक इंद्रिया है। तो भौतिक इंद्रिय के द्वारा आप आध्यात्मिक वस्तु दर्शन कर सकते हैं? नहीं। तो भगवान का दर्शन ये मन के द्वारा नहीं होगा, भगवान स्वयं अपने आप को प्रकाश करेंगे, तभी केवल हम भगवान को दर्शन कर सकेंगे। तो उसके कारण ये भी प्रभुपाद जी का ही निर्देश है। हमको प्रभुपाद जी कहते थे कि जब जपते हो तब केवल श्रवण ही करते रहो, जब भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हो केवल श्रवण ही करते रहो, श्रवण कीर्तन। और ये श्रवण कीर्तन से स्मरण होगा, क्योंकि नाम से भगवान का रूप का प्रकाश होगा। ये जो शब्द ब्रह्म जो है, ये भी कोई भौतिक शब्द नहीं है। ये हरे कृष्ण महामंत्र कोई भौतिक शब्द नहीं है, ये है आध्यात्मिक शब्द ब्रह्म। मतलब ये शब्द स्वयं भगवान ही है। जैसे यहां मिट्टी से भगवान अपने आप को प्रकाश किए हैं, ये धातु जो है, मेटल जो है, ये मिट्टी है, ये धातु से भगवान अपने आप को प्रकाश किए हैं, है ना। जो मूर्ति जो है भगवान का, विग्रह जो है, ये मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये कौन सी वस्तु है? ये मिट्टी है। तो ऐसे मिट्टी में से भगवान अपने आप को प्रकाश किए हैं। ये मूर्ति भगवान स्वयं है, ये नहीं कि ये पीतल है या तांबा है या अष्टधातु है, ये भगवान स्वयं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। वैसे ही भगवान शब्दों के रूप में भी अपने आप को प्रकाश करते हैं। और इस युग में भगवान को प्राप्त, भगवान को ध्यान करने का, भगवान का चिंतन करने का, या भगवान को मनन करने का तरीका है ये नाम जपना, ताकि ये शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान का प्रकाश हुआ है। ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की, हरिनाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंद की।